हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आंशी अमन का नोट पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में थी। विधिक ने कॉल पर बात करके आंशी का गुस्सा शांत करवाया और उसके बाद आंशी अमन से बदला लेने के लिए डायरेक्ट सीक्रेट एजेंसी ऑफिस पहुंच गई। वहां जाते ही उसने तेज प्रकाश दत्त से अकेले में बात करने को कहा। आंशी ने अमन की मीटिंग क्रैश की थी और मीटिंग में मौजूद मिस्टर जिंदल और अमन दोनों ने ही आंशी से उसके दिल की बात जाननी चाही, लेकिन आंशी अकेले में मिलने का कहकर मिस्टर तेज प्रकाश के साथ उनके कैबिन में चली गई। आंशी के इस तरह अजीब बर्ताव करने पर अमन हैरान था। उसे दिल के दिल में ये डर लग रहा था कि कहीं आंशी मिस्टर दत्त से ये कंप्लेंट करने तो नहीं आई कि अमन ने कल रात नशे में उसके साथ जबरदस्ती की होगी। अमन को ये ख्याल आते ही वो जल्दी से अपने चेयर से उठा और अपनी टीम मेंबर से बोला, मैं अभी आता हूँ, एक्चुअली मुझे आंशी से कुछ कन्फर्म करना था। तुम रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। पता नहीं ऐसी कौन सी बात उसे पता चल गई होगी जो ये अकेले में मिस्टर दत्त से बताना चाहती है, मिस्टर जिंदल बोले और वो भी अमन के साथ बाहर आ गए। अमन और मिस्टर जिंदल परेशान हालत में तेज प्रकाश दत्त के कैबिन के बाहर बैठे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद मिस्टर जिंदल ने कहा, क्या लगता है तुम्हें वो दत्त सर से क्या बात करने आई होगी? पर्सनल बात तो नहीं होगी, कल उसने विधिक के साथ एक मीटिंग अटेंड की थी और मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिला। हो सकता है इस दौरान उसे कुछ पता चला हो और वो मिस्टर दत्त से बात करना चाहती हो, अमन ने जवाब दिया। उसके दिमाग से ये ख्याल निकल ही गया था कि विधिक और आंशी की मीटिंग हुई थी और वो आंशी से इस बारे में पूछना भी भूल गया था। आई होप उस इंसान ने मेरी बेटी को धमकाया ना हो, मिस्टर जिंदल गुस्से में बोले। अमन ने उनके चेहरे के भावों को नोटिस किया और फिर उनसे पूछा, क्या विधिक जानता है कि आप उसकी बटरफ्लाई के डैड हो? उसने आपको इसलिए किडनैप किया था कि आप मेलिसा के पास बैठे थे, या फिर इस वजह से कि आप आंशी के डैड हो और आपके जरिए वो आंशी को ब्लैकमेल कर सकता है? इतनी टेंशन के बीच अमन को पूछने का मौका नहीं मिला। अब चांस मिलते ही उसने मिस्टर जिंदल से सबसे पहले यही पूछा कि विधिक आंशी और मिस्टर जिंदल के रिश्ते से अनजान है या नहीं। मिस्टर जिंदल ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और अमन की तरफ देखकर कहा, वो पहले से जानता है, दोनों ही कारण कह सकते हो। आज से लगभग 6-7 महीने पहले वो आंशी को ढूंढते हुए मुंबई आया था। तब मैं नहीं जानता था कि वो मेरी बेटी को क्यों ढूंढ रहा है, बस फिर बिजनेस के बहाने फैमिली डिनर करना चाहता था। मैं आंशी के बारे में किसी को बताता नहीं हूँ, इसलिए मैंने विधिक को भी टाल दिया था। बाद में जब उसने मुझे किडनैप किया तब उसने बताया था कि वो आंशी को ढूंढ रहा था। उसे आंशी के डैड का नाम पता था और कोइंसिडेंटली मुंबई में शिव जिंदल नाम के 5 आदमी और हैं, वो उन सभी से मिला था और एक नाम होने की वजह से मैं बच गया। मिस्टर जिंदल ने अमन को सारी कहानी बता दी थी। अमन ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मिस्टर जिंदल के चेहरे पर गहरी परेशानी के भाव थे। उन्होंने अमन से धीरे से कहा, तुम्हें क्या लगता है अमन, क्या विधि कितनी आसानी से मेरी बेटी का पीछा छोड़ देगा? उसकी आंखों में आंशी के लिए पागलपन है, न जाने क्यों और कैसे उसे मेरी ही बेटी से प्यार होना था। क्यों का कारण तो मैं नहीं जानता मिस्टर जिंदल, लेकिन कैसे का रीज़न बता सकता हूँ। आंशी बहुत इनोसेंट है, उसे दुनियादारी से और अपने आसपास के लोगों से खास मतलब नहीं होता और इस तरह की लड़कियाँ आजकल बहुत कम होती हैं। ज़्यादातर लड़कियाँ मटीरियलिस्टिक लाइफ में बिलीव करती हैं, अच्छा खाना चाहती हैं, रहना चाहती हैं, रिच पार्टनर चाहती हैं, पर आंशी इनसे अलग है और उसकी इसी क्वालिटी ने विधिक को उसकी तरफ अट्रैक्ट किया। साइकोलॉजी रहती है कि इंटेलिजेंट और रिच लड़कों को अक्सर सिंपल लड़कियां पसंद आती हैं जो थोड़ी जल्दी झल्ली की रहती हों। अब आप तो आंशी को मुझसे बेहतर जानते हो, तो अब आप ये मत पूछिएगा कि कैसे विधिक को आंशी से प्यार हो गया। उसने भले ही यहाँ नाम विधिक का लिया हो, लेकिन कहीं न कहीं वो अपने दिल की बात भी रख रहा था। अमन के आसपास भी अक्सर इसी तरह की लड़कियां रहती थीं जो खुद को हाईली मेंटेन करके रखती थीं। लावण्या और दिव्याना भी उनमें से एक थीं। जब आंशी उसे पहली बार मिली थी तो वो बिल्कुल अलग थी, ना बातचीत करने में कोई दिखावा था और ना ही उसने कभी ये कहा कि उसके डैड एक बिजनेसमैन हैं। अमन और मिस्टर जिंदल एक दूसरे से बातें करने में लगे तो थे, तो वहीं अंदर मिस्टर दत्त के कैबिन में आंशी उनके साथ बैठी थी। अच्छा बताओ बेटा, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम मुझे यहाँ अलग से लेकर आई हो? मिस्टर दत्त ने काफी प्यार से पूछा। आंशी ने उन्हें देखकर अपने चेहरे के भावों को सख्त किया और धीरे से कहा, मुझे विधिक के पास जाना है अंकल। क्या? मिस्टर दत्त हैरानी से चिल्लाए। मिस्टर दत्त इतनी जोर से चिल्लाए थे कि उनके चिल्लाने की आवाज बाहर तक आई थी। बाहर बैठे मिस्टर जिंदल और अमन ने उनकी आवाज सुनी तो उन्होंने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा। मिस्टर जिंदल ने परेशान स्वर में कहा, अंदर सब ठीक तो होगा? सर का रिएक्शन देखकर तो नहीं लग रहा। आई होप उनकी बातें जल्दी से खत्म हो, स्ट्रेस के साथ साथ एक्साइटमेंट भी हो रहा है, अमन ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर भी परेशानी थी। अंदर मिस्टर दत्त के चिल्लाने पर आंशी ने उनकी तरफ तिरछी निगाहों से देखा और दबी आवाज में कहा, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मेरी आवाज लाउड है, फिर भी मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा जिसकी वजह से आपने ये रिएक्शन दिया है। तुम विधिक के पास जाने का बोल रही हो और मैं ऐसा रिएक्शन भी ना दूं? मिस्टर दत्त ने आंखें तरेर कर जवाब दिया, कहीं अमन ने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जिसकी वजह से तुमने ये डिसीजन लिया है? नहीं, उसमें इसका कोई रोल नहीं है। मैं उससे नाराज जरूर हूँ, पर वो हमारा पर्सनल मैटर है, वो मैं आपको नहीं बताने वाली। मैं कल विधिक से मीटिंग के दौरान मिली थी। एक्चुअली मुझे आपको बताना चाहिए या नहीं, आई डोंट नो, मैंने गलत किया या सही, पर मुझे जो समझ आया वो मैंने कर दिया। आंशी हिचकिचाते हुए अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी। उसने विधिक को उस आदमी को मारने के लिए कह तो दिया था जिसने उन्हें इंडिया में बम ब्लास्ट करने का काम सौंपा था, पर अब उसे डर लग रहा था कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। आंशी के इस तरह घुमा फिरा कर बात करने की वजह से मिस्टर दत्त उसे कंफर्टेबल करने के लिए बोले, देखो डरो मत, तुम्हारी और विधिक की जो भी बात हुई है वो मुझे बताओ, उसके बाद ही मैं फैसला लूंगा कि तुमने जो किया वो सही था या गलत। आंशी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ ठीक है, फिर बता देती हूँ। सर एक्चुअली मैंने विधिक को उसके पास आने के लिए हाँ कह दिया है, पर मैंने एक कंडीशन रखी है। मैंने उससे कहा था कि वो यहाँ पर अपने सारे काम करने के बाद ही यहाँ से जाए। मेरे कहने का मतलब है कि मैंने उससे ये कहा है कि वो उस आदमी को खत्म कर दे जिसने उसे यहाँ पर बम ब्लास्ट करने का मिशन दिया है। विधिक कैसा कर सकता है, उसे किसी चीज का डर नहीं है। इसी बहाने हमारे देश का एक दुश्मन खत्म हो जाएगा। और आंशी बोलते हुए रुक गई। उसने देखा मिस्टर दत्त उसकी तरफ एक टक देख रहे थे। आंशी के चुप होने पर मिस्टर दत्त ने कहा, घबराओ मत, तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। अब मैं कह सकता हूँ कि तुम विधिक की कमजोरी का फायदा उठाने लायक हो गई हो। क्या तुम वहाँ जाकर हमारे मिशन को अंजाम देना चाहोगी? विधिक राणा जैसे इंसान को कोई नहीं पकड़ सकता। आज तक उसका बाप भी नहीं पकड़ा गया और ना ही विधिक पकड़ा जाएगा। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाकर विधिक के खिलाफ सबूत इकट्ठा करो।
आंशी भी मिस्टर दत्त से कुछ ऐसी ही बात करने आई थी। उनके हाँ कहते ही आंशी खुश हो गई। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर आपके पास 3 दिन का टाइम है। आपको मुझे ट्रेंड करना है, डैड और अमन को समझाना है कि वो मुझे जाने से ना रोकें। तुम इतना मुश्किल काम मुझे क्यों दे रही हो? ट्रेनिंग मैं करवा दूंगा, लेकिन तुम्हारे पापा और हस्बैंड से निपटना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हें खुद ही उन्हें कन्विंस करना होगा। तुम जिस एटीट्यूड से यहाँ आई थी उसके बाद वो दोनों ही तुमसे गुस्सा होंगे। मिस्टर दत्त बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोले। आंशी के साथ वो भी बिल्कुल उसी की तरह बर्ताव करने लगे। प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए ना, मैं ऑलरेडी इतना कर रही हूँ, एक इंटरनेशनल माफिया के पास जा रही हूँ, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते अंकल? आंशी ने प्लीडिंग वे में कहा। ठीक है, फिर मीटिंग रूम में चलते हैं और वहाँ सबको बताते हैं, मिस्टर दत्त ने जवाब दिया। आंशी का मासूम चेहरा देखकर वो भी आसानी से मान गए थे। आंशी अपनी चेयर से उठी और बाहर जाने को हुई तभी मिस्टर दत्त ने कहा, तुम अमन से प्यार करने लगे हो ना, मैंने फील किया है कि उसके दिल में भी तुम्हारे लिए इमोशंस हैं। तुम्हारे आसपास वो एक अलग ही इंसान होता है। मुझे वो अच्छा लगता है, बाकी मुझे उसका कुछ पता नहीं है और ना ही मुझे पता करना है। फिलहाल मुझे विधिक के पास जाने पर फोकस करना है, आंशी ने सिर हिलाकर कहा और फिर बाहर जाने लगे। मिस्टर दत्त भी उसके पीछे आ रहे थे। जैसे ही मिस्टर दत्त ने मीटिंग रूम का दरवाज़ा खोला, अमन और मिस्टर जिंदल खड़े हो गए। उन्हें वहाँ देखकर मिस्टर दत्त समझ गए थे कि वो थोड़ी देर बाहर बैठे थे। मीटिंग रूम में चलकर बताता हूँ, मिस्टर दत्त ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा। आंशी बिना किसी भाव के दूसरी तरफ देख रही थी, उसे अमन से आई कॉन्टैक्ट नहीं करना था। मिस्टर दत्त ने फिर उन सबको मीटिंग रूम में चलने का इशारा किया। मीटिंग रूम में आते ही टीम फिर से अलर्ट हो चुकी थी, सब जगह पर जाकर बैठ चुके थे जबकि आंशी आगे मिस्टर दत्त के साथ खड़ी थी।